आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विक्टोरिया में कोरोना के नए मामलों के चलते देशभर में बिगड़ी प्रतिबंधों को कम करने की योजना। भारत में चीन से संबंधित करीब 59 ऐप प्रतिबंधित और ब्रावो का धोनी के जन्मदिन पर संगीत भरा उपहार। और अब समाचार विस्तार से। विक्टोरिया में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर क्वींसलैंड सीमा पर प्रतिबंधों को और मजबूत किया जाएगा। 3 जुलाई से विक्टोरिया से क्वींसलैंड में प्रवेश करने वालों को रोका जाएगा या फिर उन्हें अपने खर्च पर 14 दिनों के लिए होटल में एकांतवास में रहना होगा। हालांकि क्वींसलैंड बाकी राज्यों के लिए अपनी सीमाओं को 10 जुलाई से खोल रहा है। आगंतुकों को सीमा घोषणा पत्र के जरिए यह बताना होगा कि पिछले 14 दिन में वो विक्टोरिया में तो नहीं गए थे। झूठी घोषणा करने वालों पर $4,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वींसलैंड के प्रीमियर एनास्तासिया प्लाज़ुक ने कहा है कि उनका राज्य विक्टोरिया की हर संभव सहायता मुहैया कराएगा।
We will do everything to preserve Queensland's good record at preventing the spread of COVID-19 in our state. We are in a very good position at the moment, but we know at any time anything could change. We have good systems in place and we must do everything we can to help Victoria during this time.
दूसरी ओर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में नए मामलों को देखते हुए 20 जुलाई से अपनी सीमा खोलने की योजना को रद्द कर दिया है। प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत में न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के निवासियों के लिए संभावित अपवादों पर निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन फैसलों के बीच साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि रखा जाएगा।
I know that this is tough. I know that there are many families who are dislocated because of the border arrangements. I know that it's very tough on business because of the border arrangements. But we've got to protect the people of South Australia. We have worked so hard to get ourselves into a very enviable position and we're not prepared to go backwards.
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ग्लेडिस बेरजैकलिन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि क्वींसलैंड अपने योजना के मुताबिक सीमाएं खोलेगा। हालांकि इससे पहले क्वींसलैंड के प्रीमियर ने सीमाओं को खोलने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। प्रीमियर बेरजैकलिन का कहना है कि सीमाएं खोलने के बाद भी कोविड सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है।
I encourage her to open her borders. New South Wales has demonstrated that you can have a COVID-safe environment. You have to be vigilant, and I'm very concerned about what's happening in Victoria. But having said that, we've also kept New South Wales has kept its borders open during the entire time, and we've managed to get to this place through vigilance and the hard work of the community.
इस बीच विक्टोरिया में एक दिन में फिर कोविड-19 के 64 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। इन मामलों में 13 मामले ज्ञात स्रोतों से सामने आए हैं, जबकि 20 मामलों को नियमित जांच में पकड़ा गया है और 31 मामलों की जाँच जारी है। बताया जा रहा है कि संक्रमण से निपटने में मदद के लिए करीब 800 केंद्रीय कर्मचारी विक्टोरिया पहुँचेंगे। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मामलों में हस्तक्षेप और जासूसी के लिए चीन पर आरोप लगाने की बात कही है। ये बात न्यू साउथ वेल्स में लेबर एमपी शौकत मुसलमानी की पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधों के संदेह पर छापेमारी के बाद सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया राजनेताओं और मीडिया द्वारा बताई जा रही जासूसी का कोई सबूत नहीं है। चावलीजन ने ऑस्ट्रेलिया पर ही चीन और दूसरे देशों में खुफिया अभियान चलाने का आरोप लगाया है।
They steal information and data from other countries, jeopardizing others' sovereignty and security. But they play the part of the victim, peddling rumors and stoking confrontation by staging a farce of the thief crying, "Stop thief." They have long crossed the line. They owe an honest answer to the Chinese people and the international community.
这些人应当给中国人民和世界人民一个交代。
और अब खबरें भारत से। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने चीन से संबंधित 59 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इस ऐप्स में खासतौर पर टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप शामिल हैं। भारत सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। भारतीय समाचार चैनल NDTV ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि खुफिया सूचना में बताया गया था कि ये ऐप्स उपयोग की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता से समझौता कर रहे हैं। सरकार ने जिन ऐप्स को ब्लॉक किया है उनमें टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, हेलो, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, वी चैट, यूसी न्यूज़, वीबो, जेंडर मुख्य रूप से शामिल हैं। इन ऐप्स पर प्रतिबंध के बारे में अपने एक बयान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर ये ऐप सुरक्षित नहीं थे तो इस मामले में सरकार ने बहुत देर कर दी है।
इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलम्ब कर दिया है। और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। अब आगे देखना है क्या होता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार मोदी सरकार से गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनातनी पर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि संसद में साल 1962 से अब तक का जिक्र होगा। अमित शाह के इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस बहस के लिए तैयार है और ये बहस होनी चाहिए।
मैं पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और राहुल जी इज क्वाइट केपेबल ऑफ टेकिंग एनीवन ऑन। बहस करो, उधर करो शुरू से, जब से चाइना के साथ हमारी चीनी हिंदी भाई भाई का स्लोगन चला था, लेट देम स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन कम डाउन एंड सी हाउ चाइनीज हैव डन दिस। आई मीन जिस तरीके से हमें लेट डाउन किया था 62 में, अभी फिर वही बात है। इट्स द सेम थिंग, इन फैक्ट इट्स अ वर्स सिचुएशन। वो तो बॉर्डर क्लैश था, दिस इज गोइंग टू बी फॉर टेरिटोरियल एरिया को ये काबू करना चाह रहे हैं।
देश में जारी कोरोना संकट और चीन के साथ तनातनी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट के जरिए दी है। माना जा रहा है कि गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़पें और उसके बाद की गतिविधियां इस संबोधन के केंद्र में रह सकती हैं, जिसमें चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी शामिल है। मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 18,522 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 418 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,66,841 हो गई है। हालांकि इसमें 3,34,822 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 16,893 पहुंच गई है। देश में रिकवरी की दर भी बढ़कर 59.06% पहुँच गई है। कश्मीर के हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ दिया है। 90 वर्षीय सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के आजीवन अध्यक्ष थे। हालांकि वो साल 2010 से अधिकतर घर में ही नज़रबंद रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी ने सोमवार सुबह जारी किए गए एक ऑडियो संदेश में कहा कि वो मौजूदा हालात के चलते ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र मैं इस मंच से पूरी तरह अलग हो जाने की घोषणा करता हूं। इस संदर्भ में मैं मंच के सभी घटकों को विस्तृत खत पहले ही भेज चुका हूं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपये में कीमत 51.93 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 68 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। जब पूरी दुनिया खेल से जुड़े आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो रहे थे या निलंबित थे, तब जर्मनी ने घरेलू फुटबॉल की शीर्ष प्रतियोगिता बुंदेसलीगा के बचे हुए मैचों का सफलतापूर्वक आयोजन कर यूरोप में मिसाल पेश की है। फाइनल मुकाबले के बाद हालांकि एक ट्रॉफी थी, पदक थे, स्मारक टी शर्ट थे, लेकिन मैदान में प्रशंसक नहीं थे। शनिवार को बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम किया और लीग ने सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद राहत की सांस ली। लीग को फिर से शुरू करने की योजना कारगर साबित हुई। वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो मैदान के बाहर भी अपने संगीत प्रेम को लेकर काफ़ी चर्चित हैं। उनके बनाए कई गाने चर्चित रहे हैं। अब उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर उन्हें खास उपहार देने की योजना बनाई है। ये उपहार एक गीत है जो कि 7 जुलाई को उनके जन्मदिन पर है और क्योंकि धोनी 7 अंक को अपने लिए शुभ मानते हैं। ब्रावो ने धोनी से जुड़ी तमाम खास बातों को शब्दों के जरिए गानों में प्रयोग है। मतलब ब्रावो ने इस साल 2007 वर्ल्ड कप, आईपीएल खिताब और यहां तक कि माही के ट्रेडमार्क शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट का भी इस गाने में जिक्र किया है। और अब डालते हैं नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में हालांकि धूप दिनभर खिली रह सकती है लेकिन रात को यहां पर बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में सुबह के वक्त कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में बुधवार को ज़्यादातर धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में धूप की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में भी ज़्यादातर धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 39 डिग्री, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।